नमस्ते, मैं आरव हूँ। 903 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर फॉर द वेब एंड बियॉन्ड, लुई रोसेनफेल्ड। पीटर मॉरविल और होर्खे अरांगो की इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर पर आधारित एक व्यावहारिक और वैचारिक मार्गदर्शिका है यह पुस्तक। डिजिटल उत्पादों, वेबसाइटों और बहुमाध्यम सेवाओं में सूचना को इस तरह व्यवस्थित करने पर केंद्रित है कि लोग उसे आसानी से ढूंढ, समझ और उपयोग कर सके। इसका विषय केवल मेनू या साइट मैप बनाना नहीं है, बल्कि सामग्री, उपयोगकर्ता की जरूरतों और संगठनात्मक संदर्भ के बीच संतुलन बनाना है। लेखक बताते हैं कि सूचना की अधिकता में अच्छी संरचना स्वयं एक उपयोगकर्ता अनुभव बन जाती है। पुस्तक संगठन, लेबलिंग, नेविगेशन, खोज और मेटाडेटा जैसे मूल तंत्रों को आपस में जुड़ी प्रणाली के रूप में देखती है। चौथा संस्करण वेब तक सीमित न रहकर मोबाइल, विभिन्न उपकरणों और बदलते डिजिटल चैनलों के लिए अर्थपूर्ण संरचनाएं बनाने की चुनौती पर भी ध्यान देता है। इसका उद्देश्य तैयार नुस्खे देना नहीं, बल्कि ऐसी सोच विकसित करना है जिससे जटिल सूचना परिवेश समय के साथ भी उपयोगी, विस्तार योग्य और समझने योग्य बने रहे। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, सूचना पारिस्थितिकी में उपयोगकर्ता। सामग्री और संदर्भ का संतुलन पुस्तक का केंद्रीय ढांचा सूचना पारिस्थितिकी है, जिसमें उपयोगकर्ता, सामग्री और संदर्भ एक दूसरे पर निर्भर घटक हैं। उपयोगकर्ता केवल लक्ष्य समूह की जनसांख्यिकीय सूची नहीं है, बल्कि उनकी जरूरतें, कार्य, अनुभव, भाषा और जानकारी खोजने की आदतें भी महत्वपूर्ण हैं। सामग्री में दस्तावेज, डेटा, चित्र, उत्पाद विवरण, सेवाएं और उनके मौजूदा संबंध शामिल होते हैं। संदर्भ में संस्था के लक्ष्य, संस्कृति, तकनीकी सीमाएं, संसाधन, नीतियां और व्यावसायिक दबाव आते हैं। लेखक का तर्क है कि इनमें से किसी एक को अलग करके देखने से कमजोर आर्किटेक्चर बनता है। उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ताओं के लिए सहज श्रेणियां संस्था के आंतरिक विभागों से अलग हो सकती हैं। इसी तरह, एक आदर्श वर्गीकरण तब विफल हो सकता है जब सामग्री लगातार बदलती हो या उसे बनाए रखने के लिए संसाधन न हो। इसलिए इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्ट का काम केवल पन्नों को क्रम में रखना नहीं, बल्कि इन प्रतिस्पर्धी वास्तविकताओं को स्पष्ट करना है। यह दृष्टि डिजाइन को सतही स्क्रीन व्यवस्था से आगे ले जाती है। इससे टीम यह पूछती है कि किसे क्या चाहिए, उपलब्ध सामग्री वास्तव में कैसी है और संगठन लंबे समय तक उस संरचना को संचालित कर भी पाएगा या नहीं। यही संतुलन किसी डिजिटल अनुभव की खोज योग्यता और समझने योग्य होने की क्षमता तय करता है। दूसरा, संगठन, लेबलिंग। नेविगेशन और खोज को एक संयुक्त प्रणाली मानना पुस्तक इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर के चार प्रमुख तंत्रों, संगठन, लेबलिंग, नेविगेशन और खोज को अलग अलग फीचर नहीं मानती। संगठन तंत्र तय करता है कि सामग्री किन श्रेणियों, विषयों, कार्यों या दर्शकों के आधार पर समूहित होगी। लेबलिंग तंत्र उन समूहों और क्रियाओं के लिए ऐसी भाषा चुनता है जिसे लोग समझ सके। नेविगेशन तंत्र उपयोगकर्ता को वर्तमान स्थान, उपलब्ध विकल्प और आगे बढ़ने के रास्ते बताता है। खोज तंत्र तब सहारा देता है जब व्यक्ति ब्राउज करने के बजाय सीधे किसी ज्ञात या अनुमानित वस्तु तक पहुंचना चाहता है। इनमें असंगति होने पर अनुभव टूट जाता है। यदि मेनू में एक शब्द हो, पृष्ठ शीर्षक में दूसरा और खोज परिणामों में तीसरा, तो उपयोगकर्ता को यह समझना कठिन होता है कि वे एक ही अवधारणा है। लेखक इसीलिए वर्गीकरण और शब्दावली को डिजाइन के मूल निर्णयों के रूप में रखते हैं। बड़ी वेबसाइटों में एक ही सामग्री कई रास्तों से मिल सकती है, इसलिए केवल कठोर पदानुक्रम पर्याप्त नहीं होता। संदर्भगत लिंक, संबंधित सामग्री और प्रभावी खोज भी आवश्यक होते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश है कि किसी स्क्रीन का स्थानीय सुधार पर्याप्त नहीं है। पूरी सूचना प्रणाली में शब्द, मार्ग और परिणाम एक दूसरे के अनुरूप होने चाहिए, तभी उपयोगकर्ता को हर चरण पर अनुमान लगाने की जरूरत कम पड़ती है। तीसरा, नियंत्रित शब्दावली और थिसॉरस से भाषा की अस्पष्टता कम करना। इस पुस्तक की विशिष्ट ताकतों में नियंत्रित शब्दावली और थिसॉरस पर विस्तृत ध्यान शामिल है। डिजिटल सामग्री में एक ही विचार के लिए अनेक शब्द प्रयुक्त हो सकते हैं, जबकि एक ही शब्द के कई अर्थ भी हो सकते हैं। यह स्थिति नेविगेशन, टैगिंग और खोज परिणामों को भ्रमित करती है। नियंत्रित शब्दावली यह तय करने में मदद करती है कि किसी अवधारणा के लिए प्राथमिक शब्द कौन सा होगा और वैकल्पिक शब्दों को उससे कैसे जोड़ा जाएगा। थिसॉरस में प्राथमिक शब्द, रूपांतर या वैकल्पिक शब्द, व्यापक शब्द, संकीर्ण शब्द और संबंधित शब्दों के संबंध बनाए जा सकते हैं। इसका लाभ केवल पुस्तकालय जैसे औपचारिक संग्रहों तक सीमित नहीं है। उत्पाद कैटलॉग, सहायता केंद्र, सरकारी सूचना, उद्यम सामग्री और बड़े ज्ञान भंडार में भी यह भाषा को अधिक सुसंगत बनाता है। उदाहरणतः, उपयोगकर्ता किसी वस्तु को बोलचाल के शब्द से खोज सकता है, जबकि संस्था उसे तकनीकी नाम से दर्ज करती है। अच्छे शब्द संबंध खोज को सही दिशा दे सकते हैं। फिर भी लेखक इसे केवल शब्दों की सूची तैयार करने का काम नहीं मानते। शब्दावली उपयोगकर्ताओं की भाषा, सामग्री की प्रकृति और संस्था की जरूरतों से निकलनी चाहिए। बहुत कठोर नियंत्रण उपयोगकर्ता की सहज भाषा को दबा सकता है और बहुत ढीलापन असंगति बढ़ा सकता है। इसलिए इसका उद्देश्य पूर्णता नहीं बल्कि खोज, समझ और रखरखाव के बीच उपयोगी संतुलन बनाना है। चौथा, अनुसंधान से रणनीति और कार्यान्वयन तक पुनरावृत्त प्रक्रिया। पुस्तक इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया प्रस्तुत करती है, पर उसे सीधी रेखा वाली परियोजना योजना नहीं बताती। काम की शुरुआत सामान्यतः उपयोगकर्ताओं, सामग्री और संगठनात्मक उद्देश्यों को समझने से होती है। इसके बाद सामग्री का आकलन, संरचना के विकल्प, नेविगेशन के मॉडल, लेबलों की जांच और खोज की जरूरतों पर विचार किया जाता है। इन निर्णयों को साइट मैप, ब्लूप्रिंट, वायरफ्रेम और अन्य आरेखों के जरिए स्पष्ट किया जा सकता है। ऐसे दस्तावेज केवल डिजाइन टीम के लिए नहीं होते, वे डेवलपमेंट, संपादकीय और व्यावसायिक पक्षों के बीच साझा समझ भी बनाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच और संशोधन पूरे काम में चलते रहते हैं। नई सामग्री, उपयोगकर्ता परीक्षण, तकनीकी बाधाएं या हितधारकों की प्रतिक्रिया प्रारंभिक संरचना को बदल सकती है। लेखक इस पुनरावृत्ति को असफलता नहीं, जटिल सूचना परिवेश की स्वाभाविक विशेषता के रूप में रखते हैं। इससे टीम बहुत जल्दी अंतिम समाधान घोषित करने के बजाय अपने अनुमानों को परखती है। पुस्तक यह भी स्वीकार करती है कि वास्तविक परियोजनाओं में बजट, समय और संगठनात्मक राजनीति सीमाएं बनाती हैं। इसलिए आदर्श प्रक्रिया के साथ व्यावहारिक निर्णय क्षमता भी जरूरी है। इस दृष्टिकोण का मूल्य यह है कि आर्किटेक्चर को केवल आरंभिक डिलीवरेबल नहीं बल्कि शोध, संवाद, डिजाइन और रखरखाव से जुड़ी सतत जिम्मेदारी माना जाता है। अंत में वेब से आगे अनेक उपकरणों और बदलती सेवाओं के लिए अर्थपूर्ण संरचना। चौथे संस्करण का महत्वपूर्ण विस्तार यह है कि सूचना संरचना को केवल पारंपरिक वेबसाइट की समस्या नहीं माना गया है। लोग एक ही संस्था की जानकारी को डेस्कटॉप, वेब, फोन, ऐप, पहनने योग्य उपकरण, खोज परिणाम या अन्य डिजिटल संपर्क बिंदुओं के माध्यम से पा सकते हैं। हर माध्यम का स्क्रीन आकार, उपयोग संदर्भ और बातचीत का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सामग्री का अर्थ और उसके संबंध बिखरने नहीं चाहिए। पुस्तक इसलिए अर्थपूर्ण संरचनाओं पर जोर देती है। जब सामग्री के प्रकार, गुण, संबंध और मेटाडेटा स्पष्ट होते हैं, तब उसे अलग चैनलों में अधिक सुसंगत ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। यह सोच केवल एक सुंदर नेविगेशन मेनू बनाने से अलग है। इसमें यह प्रश्न शामिल है कि कोई सामग्री वस्तु क्या है, किससे जुड़ी है, किसके लिए प्रासंगिक है और अलग परिस्थितियों में कैसे दिखाई जानी चाहिए। बहुमाध्यम डिजाइन में उपयोगकर्ता का कार्य भी बदलता है। फोन पर त्वरित खोज या छोटा निर्णय प्रमुख हो सकता है, जबकि बड़े स्क्रीन पर तुलना और गहरा अध्ययन संभव है। इसलिए सभी चैनलों में एक जैसी स्क्रीन दोहराना समाधान नहीं है। पुस्तक का दृष्टिकोण एक साझा सूचना आधार बनाने का है, जिसके ऊपर संदर्भ के अनुसार उपयुक्त अनुभव रचे जा सके। यह सिद्धांत आज के उत्पाद पारिस्थितिक तंत्रों में विशेष रूप से उपयोगी है, जहां सामग्री और सेवाएं अनेक माध्यमों में लगातार बदलती रहती है। निष्कर्ष में, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर फॉर द वेब एंड बियॉन्ड उन यूएक्स डिजाइनरों, प्रोडक्ट मैनेजरों, कंटेंट रणनीतिकारों, डेवलपरों और शोधकर्ताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जिन्हें जटिल डिजिटल सामग्री को उपयोगी अनुभव में बदलना होता है। नए पाठक इससे इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर की बुनियादी भाषा और प्रमुख निर्णय क्षेत्रों को समझ सकते हैं। अनुभवी पेशेवर इसे संदर्भ ग्रंथ की तरह उपयोग कर सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें खोज, नेविगेशन, वर्गीकरण, मेटाडेटा या बहुमाध्यम संरचना से जुड़ी समस्या सुलझानी हो। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह डिजाइन निर्णयों को केवल व्यक्तिगत पसंद के बजाय उपयोगकर्ता, सामग्री और संदर्भ के प्रमाणों से जोड़ना सिखाती है। इसका बौद्धिक लाभ यह है कि यह सूचना को निष्क्रिय सामग्री नहीं बल्कि संबंधों और अर्थों की प्रणाली के रूप में देखने की आदत बनाती है। समान श्रेणी की कई किताबें इंटरफेस पैटर्न, दृश्य डिजाइन या उत्पाद प्रक्रिया पर अधिक केंद्रित रहती है। यह पुस्तक उनसे अलग इसलिए है क्योंकि यह उन संरचनात्मक निर्णयों तक जाती है जो स्क्रीन बनने से पहले किए जाते हैं और स्क्रीन बदलने के बाद भी बने रहते हैं। नियंत्रित शब्दावली और थिसोरस जैसे अपेक्षाकृत कम चर्चित विषयों की इसकी गहराई भी इसे अलग पहचान देती है। कुछ उदाहरण और तकनीकी संदर्भ समय के साथ पुराने लग सकते हैं, लेकिन इसके मूल सिद्धांत जैसे स्पष्ट भाषा, सुसंगत रास्ते, खोजयोग्यता और पुनरावृत्त सुधार स्थायी उपयोगिता रखते हैं। इसलिए यह त्वरित डिजाइन प्रेरणा की पुस्तक नहीं बल्कि दीर्घकालिक सूचना सोच विकसित करने वाला गंभीर आधार है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं लुई रोजनफेल्ड, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।